स्पाइस रेडियो और रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप। गपशप का प्रोग्राम है। हमारी घड़ियों में बाद दोपहर के 2:06 हो चुके हैं। अब से लेकर 3 बजे तक आपका और हमारा साथ रहेगा हमारे आज के इस कार्यक्रम में, जिसका नाम बड़े प्यार से हमने गपशप रखा है, क्योंकि इसमें वो सभी बातें जो आज आपकी नजरों में अटकेंगी, खटकेंगी और दिल में समाएंगी, उन सबको लेकर हम हाजिर हैं। ये बताते हुए कि बाहर का मौसम खुशनुमा है, हल्के फुल्के बादल हैं, बरसात सुबह हो रही थी, हमारे स्टूडियो के बाहर इस समय बरसात नहीं है और तापमान कोई 9 डिग्री के आसपास है। कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात तो ऐसे व्यक्तियों से करवाना चाहते हैं जिनका ताल्लुक एक नए यहाँ बनने वाले मंदिर के साथ है। आप हैं रवि सेरू जी और डॉक्टर विकास नौटियाल। तो आप दोनों का प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। रवि जी, प्रोग्राम में आप आए उसके लिए धन्यवाद।
धन्यवाद।
और विकास जी, आप भी, आप तो डॉक्टर हैं, सो आर यू अ मेडिकल डॉक्टर?
नो, आई एम ए PhD।
अच्छा, PhD। और PhD किस में की आपने?
मैंने वास्तु में,
वास्तु शास्त्र
जी।
तो हमारी कन्वर्सेशन आज बहुत अच्छी रहने वाली है। रवि जी, सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए।
मैं ओरिजिनली इंडिया में, भारतवर्ष में, कश्मीर में पैदा हुआ हूँ
जी।
और इंडिया में काफ़ी स्थानों पे मैं, मेरी परवरिश हुई है, दिल्ली, राजस्थान, और उसके बाद मेरी एजुकेशन बिट्स पिलानी से हुई है। मैंने मास्टर्स वहीं से किया है और उसके बाद चंडीगढ़ में करीब 10 साल तक मैं एक रिसर्च लैब में, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की लैब में एज साइंटिस्ट काम किया है।
राइट।
और 1989 से मैं कनाडा में हूँ। यहाँ काफ़ी कुछ काम किए, स्ट्रगल भी बहुत किया है
जी।
और फिर बिजनेस शुरू किया इंस्ट्रूमेंटेशन का ही, और करीब 3-3.5 साल पहले मैं रिटायर्ड हुआ हूँ। और तब से सोशल एक्टिविटीज़ में और धार्मिक कार्यक्रमों में मैं अपने आप को व्यस्त रखता हूँ।
ये बताइए कि भारत छोड़ने का के पीछे कारण क्या था? आई मीन फॉर अ बेटर लाइफ फॉर योर चिल्ड्रन?
कुछ है, हाँ, ऐसा था, लग रहा था कि जब यहाँ आएंगे तो बहुत ही ऐसा लगता था कि बहुत सुंदर देश है, यहाँ पर जो इकोनॉमिक हालत है हमारी बहुत अच्छी इम्प्रूव हो जाएगी। तो शुरू में काफ़ी झटका लगा, काफ़ी स्ट्रगल था, बट इसमें मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि ये बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है, इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज।
सर्टेनली
थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, और क्योंकि मैं आज से करीब 35 साल पहले आया था, तो जबकि इंटरनेट अभी शुरू हुआ ही था
जी जी,
तो उसकी वजह से इतनी अपॉर्चुनिटी, तो इतना ज्ञान नहीं था जो कि अब है
जी जी।
और कनाडा भी काफ़ी वेलकमिंग हो गया है अब, क्योंकि उन्होंने देखा है कि जो लोग बाहर से आते हैं उनकी एजुकेशन भी मीनिंगफुल है। तो ओवरऑल जब मैं मुड़ के पीछे देखता हूँ तो बहुत ही सुंदर समय रहा। मेरी एक लड़की है जो यहीं करीब करीब ग्रो हुई है, वो 1.5 साल की थी, तो उसको मैंने बढ़ते हुए देखा है सक्सेसफुली। मैं बायोमेडिकल इंजीनियर,
वाओ,
और फिर उसका विवाह हो गया
पिताश्री के चरण कमलों की तरह, राइट।
तो और इस देश में रह के बहुत कुछ सीखा मैंने, और जो फ्रीडम, जो प्रॉस्पेरिटी, जो रिस्पेक्ट लोगों में एक दूसरे के प्रति है, उसका मैं बहुत कायल हूँ यहाँ पर। तो बहुत कुछ अच्छा यहाँ पर है जिसको हमने धीरे धीरे सीखा और ग्रहण किया है।
बहुत अच्छे, आपकी कहानी से ये जाहिर होता है कि यू नो, आप इस मुल्क में जो भी करने के लिए आए थे वो आपने पूरा किया, और चाहे मुश्किलों का सामना भी किया, लेकिन जो दिल में चाहती वो आपने पूरी की, विच इज़ वेरी नाइस। हमारे साथ डॉक्टर विकास नौटियाल हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी प्रोग्राम में स्वागत है। मैं आपसे कहने वाली थी कि मेरे ना यहाँ घुटने में दर्द है या बाजू में दर्द है, तो पता चला कि आप वो वाले डॉक्टर नहीं हैं।
जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें स्टूडियो में बुलाने के लिए
जी।
और मेरी जर्नी तो पूरी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई है, क्योंकि मैं बताना चाहूँगा, मैं गुरुकुल का स्टूडेंट रहूँ।
अच्छा,
तो वाह। तो बाल्यावस्था से ही, जब मैं शायद 8 वर्ष का होऊंगा उस टाइम पे ही मुझे गुरुकुल भेज दिया गया था।
अच्छा।
तो मेरे दादाजी की एक इच्छा थी कि हम 2 बच्चों में से एक को तो हम गुरुकुल भेजेंगे, मेरे ब्रदर इंजीनियर है
जी।
तो लेकिन उन्होंने मेरे गुरुकुल भेजा, लेकिन इस एज में कई लोग कहते हैं कि आप गुरुकुल क्या करने गए थे, तो आजकल जो मॉडर्न तरीके से ही पढ़ाया जाता है बच्चों को, तो
लेकिन जो गुरुकुल की शिक्षा है
जी
उसका तो मुकाबला नहीं है।
नहीं है, क्योंकि हमारे जो रिश्तेदार थे या ताया जी या सब कहते थे कि आप अपने बच्चों का भविष्य खराब करने के लिए गुरुकुल में भेज रहे हो, आप तो सक्षम है, आप मेरे फादर साहब रेलवे में हैं और वो कहते थे कि आप तो सक्षम है, आप तो पढ़ा सकते हैं, लेकिन वो शायद कहीं परमात्मा की कृपा और मेरे जो स्टार्स थे मुझे इस तरफ खींच लाए। तो फिर मैं पूर्व मध्यमा जिसे हम नाइन्थ कहते हैं और टेंथ कहते हैं वो गुरुकुल से की, फिर उत्तर मध्यमा 11th और 12th कहते हैं
अच्छा।
उसे मैंने गुरुकुल से किया, फिर उसमें 5 बजे उठ करके गंगा जी में स्नान करना शिक्षा होती थी हमारी और सुबह 4 बजे उठना हो, सारा दिन श्रम दान करना और वेदास को कंठ करना, वहां पे सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता था वहां पे याद कराया जाता था। तो आज भी जो मैंने गुरुकुल में पढ़ा, जो वो शास्त्र पढ़े, आज भी मुझे कंठस्थ है, यानी कि मैं कहीं पे भी उनका उच्चारण कर सकता
हूँ।
तो वो उस टाइम पे ही हो सकता था क्योंकि उस एज में और उस तरीके से जो गुरुकुल की लाइफ, मैं कहूँगा मेरी लाइफ की सबसे अच्छी जो चीज़ थी वो जो मैंने मुझे भेजा गया और मेरे घर वालों ने, तो वहाँ से फिर मेरी शुरुआत हुई गुरुकुल से। फिर गुरुकुल के बाद हमें गुरुकुल तक सभी स्टूडेंट्स को एक ही तरह से पढ़ाया जाता है, वेद पाठ, आपके 16 संस्कार क्या क्या होते हैं उनके बारे में बताया जाता है। उसके बाद में आपको चूज करना होता है किसी कोई सब्जेक्ट, जब आप ग्रेजुएशन के लिए जाते हो तो आपको किसी कॉलेज में जाना पड़ता है। तो दिल्ली में लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ है जो A+ grade यूनिवर्सिटी है आज के दिन में। तो फिर वहां पे मुझे वहां पे एडमिशन होना टफ होता है, लेकिन मेरा एडमिशन हुआ तो वहां फिर मैंने सबसे पहले ग्रेजुएशन जिसे हम शास्त्री कहते हैं 3 साल की होती है वो, जैसे ग्रेजुएशन 3 साल की होती है। फिर मैंने आचार्य किया वहां से, 2 साल की होती है। फिर मैंने विशिष्टाचार्य किया MPhil, फिर उसके बाद PhD, तो उसके लिए मैंने थीसिस लिखी। फिर हमें पर्टिकुलर
थीसिस किस विषय पे थी आपकी?
मेरी ईशान कोण पे थी।
अच्छा, ईशान कोण।
हाँ जी, तो ईशान कोण के देवता उन पे मेरी थीसिस थी। तो इसलिए फिर चूज जो मैंने किया वास्तु को किया। फिर उस फिर मैंने डिप्लोमा जेम्स के मैंने डिप्लोमे किए, कुछ कलर जेम्स कैसे हमारी लाइफ को इफेक्ट करते हैं और वास्तु हमारी लाइफ में कैसे इफेक्ट करता है। तो ये मेरी एक स्पिरिचुअलिटी से गुरुकुल से जुड़ी हुई जर्नी है और मैं कहूँगा कि ये मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ये चीज़ मिली। और जब मैं अब मैं प्रैक्टिस में आ गया था शास्त्री के बाद से ही प्रैक्टिस में, फिर मैंने काफ़ी देश, दुबई, ऑस्ट्रेलिया और ये सिंगापुर, ऐसी जगहों पे मैंने वास्तु के लिए गया।
अच्छा।
लोगों ने मुझे बुलाया और फिर कनाडा भी मैं किसी इसी कारण आया था।
अच्छा।
जब पहले ही बार आया।
अच्छा।
तो लेकिन उसके बाद में फिर यहाँ पे ऐसा एक माहौल और वो सारी चीजें देख करके कि एनवायरमेंट सारी चीजें, फिर परमात्मा ने शायद मेरी जर्नी यही के लिए लिखी थी। फिर मैं यही विनीपेक्स में शुरुआत हुई थी मेरी।
अच्छा।
तो फिर उसके बाद मैं यहाँ
वैंकूवर में आ गया
और बस एक जीवन में उद्देश्य है कि कुछ भी जो वैदिक हमारा कल्चर है और वैदिक जो पद्धति वो बहुत स्ट्रांग है तो उसको हमें स्प्रेड करना है, मेरा तो एकमात्र लक्ष्य ही है जीवन।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और बहुत कम लोगों को हम मिल पाते हैं जिनका ये लक्ष्य होता है। लोग जिंदगी में सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है, यू नो, कुछ और चीज होती नहीं है। लेकिन आई एम सो प्लीज टू हेयर कि आपका जो लक्ष्य है उस पर आप ठीक चल रहे हैं
जी।
आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि हमारे ट्राई सिटीज में एक मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, लेकिन किसी एक मंदिर के निर्माण के लिए एक तो लोगों की ज़रूरत है कि ये लोग उसमें विश्वास करते हों तो वो साथ जुड़ें, और दूसरी ये भी बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि इंसान सोचे कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हमने बना तो रखे हैं, यू नो, लेकिन क्या वहाँ पे आत्म शांति के लिए हम जाते हैं कि एक दूसरे की बदखोई करने के लिए जाते हैं, कि एक दूसरे के लिए की बातें करने के लिए जाते हैं? क्योंकि अगर आप किसी मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारे चर्च में बैठ के परमात्मा को पाना चाहते हैं और एकांत में बैठते हैं आप, उससे लॉ लगाते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन जब आप जाते हैं वहाँ खाना खाने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, दैट इज़ टोटली डिफरेंट थिंग, दैट इट बिकम्स वेरी सोशल। इस टॉपिक पे हम बात ज़रूर करना चाहेंगे क्योंकि आप दोनों जो यहाँ आज आए हैं ट्राई सिटी के नए मंदिर के निर्माण के विषय में ही हम बात करेंगे। मैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेना चाहूँगी और इसके बाद आप दोनों से मैं इसके बारे में सवाल पूछना चाहूँगी कि आपका इसके साथ ताल्लुक कैसे हुआ, किस तरह से, और क्यों ये बनाना चाहते हैं? इतने सारे तो मंदिर हैं यहाँ पे, एक और मंदिर की क्यों जरूरत है। तो स्पाइस रेडियो और रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप, गपशप का प्रोग्राम है और आज हमारे साथ रवि सेरू जी हैं और डॉक्टर विकास नौटियाल हैं। और आप रवि जी बताने वाले थे कि ट्राई सिटीज में एक मंदिर के निर्माण की कोशिश की जा रही है, उसके बारे में कुछ बताइए।
देखिए, जो हमारा हिंदुज़म या जैसे उसको सनातन धर्म कहते हैं, धर्म है नॉट इन ए टिपिकल सेंस रिलीजन, ये बहुत ही एंशंट है और वर्ल्ड वाइड करीब करीब वन बिलियन पीपल आर फॉलोइंग इट।
ऑफ कोर्स,
इवन हमारे कनाडा में भी जो है हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले लोग, दे आर क्लोज टू मोर देन अबाउट 500,000, सम पीपल से अबाउट 750 और सो
600,000 मैंने लास्ट सुना था जी।
और फॉर्चुनेटली अधिकतर शहरों में जहाँ भी हम लोगों की थोड़ी बहुत पॉपुलेशन है वहाँ पर मंदिर हैं। सरी में तो बहुत हैं
जी,
बर्नबी में हैं, रिचमंड में भी हैं। तो काफ़ी समय से जो ट्राई सिटी एरिया है, पोर्ट कोकेटलम, कोकेटलम, पोर्ट मूडी और इवन मेपल रिज, वहाँ पर भी हमारे हिंदुओं की संख्या काफ़ी बढ़ी है पिछले 15-1 सालों से। और अक्सर लोगों का ये था कि भाई हमारे पास कोई स्थान नहीं है जहाँ पर जाकर हम विधिवत अपना पूजा पाठ कर सकें या अपना कोई ऐसा मंदिर हो। तो ये कुछ प्रयत्न पहले भी, कुछ 2-1 साल पहले लोगों ने किए थे, मैं भी उनमें से एक था, किंतु हम सफल नहीं हुए। तो मंदिर के निर्माण का कार्य काफ़ी मेगा प्रोजेक्ट है और इट कैन बी क्वाइट ओवरवेलमिंग इन टर्म्स ऑफ स्केल एंड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस
जी।
तो पिछले नवंबर 2023 में हम कुछ मित्र लोग जमा हुए थे, तो हम ये वार्तालाप कर रहे थे कि भाई हमें एक बार कोशिश फिर से करनी चाहिए। और इस बार फॉर्चुनेटली हमारे साथ कुछ एनर्जेटिक और यंग लोग थे जो बहुत ही डिटरमिंड थे कि कोई मंदिर यहाँ स्थापित हो सकते हैं। और बहुत लोगों ने एज यूजुअल आर्ग्यूमेंट दिए कि क्या क्या कठिनाइयाँ आएंगी। तो मुझे ये कहते हुए बहुत हर्ष होता है कि हमारे ग्रुप में कुछ ऐसे लोग डिटरमिंड थे कि जो बिल्कुल उनकी ये डिटरमिंड भावना थी कि जितनी मर्जी कठिनाइयाँ होंगी हम कर पाएंगे। और फाइनली हमने नवंबर के एंड में एक ग्रुप बना और उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम एक इनिशियल स्टेप लेंगे और उसके को फॉलो करते हुए हमने ट्राई सिटी हिंदू कल्चरल सोसाइटी, एक ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी स्थापना की। और उसके बाद हमने लोगों से बातचीत करना शुरू किया, उन्हें बताया कि हमारा उद्देश्य इस जगह पर एक भव्य मंदिर बांके बिहारी जी को डेडिकेट करता हुआ एक हिंदू टेम्पल की स्थापना करना है। और हमें ये पता था कि मंदिर का प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है तो जिसको पूरा करने में कई वर्ष लग सकते हैं।
ऑफ कोर्स,
तो एज एन इंटरमीडिएट स्टेप हमने ये सोचा कि जो मंदिर के पीछे की जो भावना है वो भक्त लोग हैं, पीपल है, इट इज़ पीपल हु आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द होल प्रोसेस।
बिल्कुल।
तो हमने सोचा कि हम वी विल फोकस ऑन पीपल, ब्रिंग देम टुगेदर, टेल देम व्हाट आवर प्रोजेक्ट इज, और जो वो करना चाहते हैं, पूजा पाठ करना चाहते हैं, कम्युनिटी के रिचुअल्स करना चाहते हैं, फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, बच्चों को और इवन एडल्ट्स को हमारी जो धरोहर है, हेरिटेज है, कल्चरल एंड रिलीजियस हेरिटेज है, उसके बारे में अवगत कराना चाहते हैं, वो सब कार्य हम कर सकते हैं। जब तक कि मंदिर ना भी बने उसके पहले भी हम कर सकते हैं। जब ये निर्णय हो गया तो फिर हमने पहला कीर्तन अनाउंस किया 14 जनवरी को
जी।
और क्योंकि हमारे पास कोई स्थान नहीं था तो हमने रेंट लेकर एक पोर्ट कोकेटलम कम्युनिटी सेंटर में बहुत बड़ा रेंट स्पेस रेंट पे लिया। और हमने एक हमारे बहुत अच्छे जाने माने भजन सिंगर हैं मैनिटोबा से,
उनका आचार्य नितेश राधे,
हाँ, वो उनको हमने आमंत्रित किया और पूरी धूमधाम के साथ हमने भव्य कीर्तन किया। करीब करीब 300 लोग उस दिन वहाँ आए थे।
अरे वाह।
तो उसमें मैं, मुझे ये कहते हुए कोई हेसिटेशन नहीं है कि मैंने अपने जीवन में इतना बढ़िया कीर्तन कभी नहीं देखा। मैं इंडिया में ही पैदा हुआ हूँ, मेरी आधी जिंदगी हिंदुस्तान में गुजरी है, बट जो बांके बिहारी का जो माहौल उन्होंने खड़ा किया, भाव भोर हो गए हम सब लोग। लोग नाच रहे थे वहां पर, और मेरे जैसा व्यक्ति जिसको नाचना तक भी नहीं आता, आई फाउंड माई सेल्फ डांसिंग विद अदर पीपल विद भजन। तो बहुत ही सुंदर वातावरण वहां पैदा हुआ, और करीब करीब 2.5-3 घंटे तक कीर्तन चला। बहुत सारे लोग आए, लोग लैंगली से भी आए, सरी से भी आए, बर्नबी से भी आए, सब जगह से लोग आए, और उन्होंने हमें थोड़ा बहुत सपोर्ट भी किया फाइनेंशियली, और वो उस चीज़ से हम बहुत ही, हमें खुशी हुई और हमें थोड़ी प्रेरणा भी मिली। तो उसी को देखते हुए हमने ये निश्चय किया कि पहले हम हर 3 महीने ये कीर्तन करते रहेंगे
जी।
और उसके बाद, और ऐसे ही रेंटेड प्लेस पे करेंगे, और उसके बाद जैसे ही हमारे पास थोड़ी बहुत फाइनेंशियल सामर्थ्य आ जाएगा तो हम एक स्थान एक ले लेंगे रेंट पे ही, जिससे कि हम उसको डिफेक्टो एक टेंपल की शेप दे सकें। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने फिर से 31 मार्च को दूसरा भव्य कीर्तन किया है, और आपको जान के बहुत हर्ष होगा कि इस समय 450 लोगों ने ऑलरेडी अपनी स्वीकृति दे दी है आने के लिए। और हम उस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कब 31 तारीख आए और हम सब लोगों के सामने बांके बिहारी के शरण में बैठ के आनंदमय रूप से कीर्तन कर सकें।
कीर्तन का अलग अलग अंदाजा लोगों के दिमाग में होता है। कुछ लोग कीर्तन को बिल्कुल आराम से एकचित बैठ के सिर्फ हिलते हुए इस तरह से कीर्तन करते हैं। जब मुझे पहली बार बांके बिहारी मंदिर के बारे में या कीर्तन के बारे में बताया गया तो आई हैड दिस ब्यूटीफुल पिक्चर इन माय माइंड कि जिसमें कि लोग नाच रहे हैं, क्योंकि बांके बिहारी का नाम तो उसी के साथ जोड़ा जाता है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है ये देखते हुए कि भारत से बाहर, मैंने अफ्रीका में तो खैर शायद नहीं देखा होगा बिकॉज हमारी फैमिली आर्य समाजी थी, लेकिन यू नो बीइंग इन ब्रॉडकास्टिंग आप अलग अलग धर्मों को, सबको आप पहचानते हैं, आप उनको उनके बारे में जानकारी रखना चाहते हैं। सो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यू नो कुछ इस तरह का भी मंदिर यहाँ बना होगा। तो इसमें डॉक्टर साहब आपका वास्तु तो ज़रूर काम में आएगा
जी,
व्हाट डू यू थिंक?
बिल्कुल, देखिए हमने अब जो इस योजना के पीछे कारण ही ये है कि हम यहाँ कनाडा में आ गए हैं, लेकिन हमारे बच्चे और हमें भी कुछ चीज़ों का शायद एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा, जो कि हम दूर रहते हुए भी हम अपनी वैदिक पद्धति को समझ पाए। तो ये जो हमारी कल्चरल सोसाइटी है ट्राइसिटी हिंदू कल्चरल सोसाइटी, तो इसके अंदर हम ये सारी चीज़ों को लेकर के आएंगे कि हमारे संस्कार क्या होते हैं, हम क्यों तिलक लगाते हैं, या जो भी लॉजिक हैं जिन चीज़ों के पीछे जो हमारे पूर्वज हमें बताया करते थे, तो उनको हम सब कुछ इसके अंदर डालने वाले हैं। और दूसरी बात, जैसे रवि जी ने बताया, जो कीर्तन हमने, हमारा जो भी हमारा एक प्रयास है करने वाले वो बिहारी जी हैं, लेकिन हम कोशिश करते कि जो हमारे सिंगर आ रहे हैं वो भी गुरुकुल से ही पढ़े हुए हैं, तो जब वो भजन गाते हैं कुछ एग्जांपल देते हैं तो शास्त्रों का देते हैं, तो उससे और माहौल जो है आनंदमय हो जाता है। तो जो भी मैं कहूंगा, पिछली बार जो आए और उनको तो आनंद आया ही होगा, लेकिन जो और भी जो आएंगे तो उनको दिखेगा कि इसके अंदर हम सारी चीजों को टच करेंगे, कुछ बैठ करके सुनने वाले भजन, कुछ नाचने वाले भजन, कुछ आनंद लाने वाले भजन, तो इतना रस आने वाला है इस कार्यक्रम के अंदर कि आप हृदय से ही गदगद होना शुरू हो जाएंगे।
ये बताइए कि ये 31 मार्च को प्रोग्राम रखा है आपने
जी, जी।
तो उसमें अगेन क्योंकि जगह आप रेंट करते हैं, तो इस बार जरा बड़ी जगह रेंट करी है कि कितने लोग आ सकते हैं उसमें?
हाँ, उसमें जगह है करीब करीब 400 पीपल की।
अच्छा,
और लोग आते और जाते रहते क्योंकि अच्छा, काफी समय से है, एक बजे से लेके 6 बजे तक का है कार्यक्रम है।
अच्छा अच्छा,
तो बीच में लोग आते हैं जाते हैं। और मैं दो चीजें कहना चाहूंगा, एक तो होली का इस समय
जी समारोह हाँ।
तो इस बार फूलों की होली हम राधा कृष्ण जी के साथ खेलेंगे।
अच्छा।
जो कि बहुत ही यूनिक होगी।
राइट।
मतलब होती है और इंडिया में कई जगह मंदिरों में अच्छी तरीके से खेली जाती है, और यहाँ मैं लोगों को कहना चाहूंगा कि ये एक यूनिक एक्सपीरियंस होगा और ये दर्शनीय होगा। जो लोग पर्टिकुलरली होली देखना चाहते हैं तो मैं उन्हें कहूंगा करीब करीब 3 बजे के आसपास जरूर आएं।
अच्छा।
तो 3 से 4:30 के बीच में जो होली का कार्यक्रम है जहाँ प्रभु के साथ होली खेली जाएगी फूलों से, तो उसका आनंद उठाएं। मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा, जो मैंने मैं तो 35 साल से यहाँ हूँ और मंदिरों में जाता रहा हूँ, बहुत सुंदर मंदिर यहाँ हैं, उनके कार्यक्रम भी हमेशा अच्छे रहे हैं। पर्टिकुलरली मैं सरी के मंदिर से काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ
जी।
मैंने इस बार जो हमारे कार्यक्रमों में देखा है, जो अभी थोड़ा बहुत हमने किया है, उसमें खास तौर पे विकास जी की वजह से, क्योंकि ये ट्रेंड गुरुकुल से हैं, जो मैंने चीज़ बहुत जो मुझे बहुत सुखद लगी है कि जब हम शुरू करते हैं, पहले तो पीछे एक उन्होंने बैकग्राउंड बनाया होता है, मूर्तियां रखी हुई हैं, पीछे बैकग्राउंड है, उसमें भी हर चीज़ के पीछे रीज़न है वास्तुशास्त्र के हिसाब से कि कौन सी चीज़ कहाँ होगी। और बहुत ही सुंदर, हमारे पास कोई मंदिर नहीं है बट लोग जितने भी पिछली बार आए वो सब मंत्रमुग्ध थे कि इतना सुंदर इन्होंने स्टेज के ऊपर बनाया हुआ था। और उससे भी ज़्यादा सुंदर खासतौर पर मेरे लिए कि जो भी वहाँ पर हम कार्य कर रहे थे, थैंक्स टू विकास जी, ये पहले बताते थे कि इसका कार्य का मतलब क्या है। इन्होंने गणेश वंदना भी की, तो ये हर चीज़ को करने से पहले बताते थे कि हम क्या करने जा रहे हैं, और कॉमन मैंस लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में ये उसका अर्थ बताते थे, क्योंकि ये ख़ास तौर पे जो आम आदमी है, मी इंक्लूडेड इन माय यूथ, हम इस चीज़ से बहुत ही धर्म से हट गए थे कि हम समझते थे कि बड़े 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 ये कुछ बोल देते हैं पंडित लोग और सब संपन्न हो जाता है, इसका कोई अर्थ नहीं है। और इसी की वजह से काफ़ी लोग धर्म से हट जाते हैं क्योंकि उन्हें कोई ज्ञान नहीं है, और वो देखते हैं कि एक बिल्कुल रूढ़िवाद तरीके से मंदिरों को चलाया जा रहा है। उसको देखते हुए मैं ये बहुत प्रसन्नता है ये कहते हुए कि हमारे यहाँ थैंक्स टू विकास जी और इनकी फॉर्मल ट्रेनिंग गुरुकुल से, जितनी भी पूजाएँ होती हैं, जितने भी मंत्रों का उच्चारण होता है, ये उनका सरल भाषा में अनुवाद करते हैं पहले भी और बाद में भी, और उदाहरण भी देते हैं, जिसकी वजह से मैंने देखा है कि हमारे यहाँ बहुत सारे यूथ हैं जो अब आते हैं, पिछली बार भी आए हैं और इस बार बहुत सारे यूथ ने भी अपनी स्वीकृति दी है आने के लिए, और मेरे ख्याल में इसका बहुत कुछ श्रेय जो है वो विकास जी को जाता है।
नहीं, बहुत एक अच्छी बात है, और मैं ये इस धर्म के बारे में ज़रूर कहना चाहूँगी कि वो ही धर्म आगे बढ़ता है जो कि समय के साथ बदलता है, क्योंकि अगर धर्म को आप वे ऑफ लाइफ कहते हैं तो उसे समय के साथ बदलना ही होगा, अदरवाइज इट्स नॉट वे ऑफ लाइफ।
बिल्कुल सत्य है, हमारे शास्त्रों के अंदर ही वर्णित है कि देश काल संकीर्त्य, तो जैसा देश उसके अनुरूप हो जाना चाहिए।
राइट।
तो वही हम प्रयास करते हैं कि हमारी यूथ को कैसे समझ आए, उन्हीं की भाषा में उनको समझाया जाए,
और हर चीज का आपने कहा मतलब है
जी,
और उसका कारण है क्यों वहाँ पे रखी गई है
जी।
उस पर मैं चाहूँगी कि हम थोड़ी सी बात ज़रूर करें, और हमारे सुनने वाले अगर आपसे कोई सवाल पूछना चाहें तो हम उनसे भी कहेंगे कि हमारे टेलीफोन लाइंस खुले हैं 604-280-1200 या 604-299-8863, और मेरे पास तो वैसे भी काफ़ी सवाल आप लोगों के लिए हैं, मैं पूछती रहूँगी। ख़ासतौर पर ये जो उच्चारण की बात है उसके बारे में मैं आपसे जरूर कुछ सवाल पूछना चाहूंगी। वॉइस रेडियो और रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप, गपशप का प्रोग्राम है। आज हमारे साथ रवि सेरू जी और डॉक्टर विकास नौटियाल आए हुए हैं, जो कि ट्राई सिटी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और 31 मार्च को एक प्रोग्राम इनका कम्युनिटी सेंटर में हो रहा है, जिसका पता आप बताएंगे थोड़ी देर में, और हम अपने सुनने वालों को भी बताएंगे। 1 से लेकर 6 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा, उसमें लोग आमंत्रित हैं, कोई 400 के करीब आप कह रहे हैं लोग आ सकते हैं, और 400 के करीब लोगों ने आपको हामी भर भी दी है।
450
से, वाव। सो लोग आते रहें जाते रहें, अगर 6 घंटे कोई रहना चाहे तो रह सकता है वहाँ पे।
बेशक।
अच्छा, और अगर उनको भूख लगे तो खाना वाना मिलेगा,
भोजन भी है।
मैंने सोचा पूछ लूँ। मैं आपसे पूछना चाह रही थी वास्तु के हिसाब से, और आपने गुरुकुल की बात की, इट्स फैसिनेटिंग टॉपिक फॉर मी. मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने कमर्शियल ब्रेक में बताया कि गुरुकुल में संस्कृत में
जी
आप पढ़ते थे, बात करते थे
जी.
सो संस्कृत पढ़ना और संस्कृत में बात करना उन लोगों के साथ जो कि संस्कृत जानते हैं, तो बहुत अच्छा लगता होगा आपको
जी.
तो अंग्रेजी सीखना और हिंदी सीखना, वो कितना मुश्किल था आपके लिए?
ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि जब गुरुकुल में चल जाते, गुरुकुल के अंदर सिर्फ एक जो मैं कहूँगा कि त्रुटि कह सकते हैं या लैक कहूँगा कि एक यही है कि गुरुकुल के अंदर जब एक छात्र को भेज दिया जाता है तो उसको सिर्फ संस्कृत ही पढ़ाई जाती है, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि इंग्लिश का भी कहीं ना कहीं प्रावधान हो तो वो बहुत अच्छी. जैसे कि मैं अपनी ही बात करूं, जब मैं गुरुकुल से पढ़ के आया और दिल्ली जैसी बड़ी जगह पे मुझे जाना था, और उस समय पे जो एक दो साल का टाइम था, उस टाइम पे बहुत कष्ट हुआ कि इंग्लिश में बात करना, हिंदी में उस तरीके से बात करना, जबकि एक संस्कृत, क्योंकि जब आप जो सुनते हैं वैसा ही आपका एक माहौल बन जाता है सारा. तो फिर संस्कृत, जब हम किसी रिक्शा वाले को भी बात करते, भवान तत्र चलती कब्बा, तो ऑटोमेटिकली मुंह से संस्कृत में आता था. वो कहते थे क्या बोल रहे हो, कौन से देश से आए हो. तो एक ऐसा सा वो हो गया था. तो हाँ, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं टफ रहता था जब हम गुरुकुल से आए और जब संस्कृत से. और सबसे ब्यूटी क्या है संस्कृत की, कि जब हम आपस में भी बात कर रहे थे और हमारा, हमारे कुछ छात्र, कुछ ग्रुप था हमारा जो कि एडमिशन लेने के लिए दिल्ली आया, तो हम चार लोग थे जो कि एक साथ हमारा एडमिशन दिल्ली में हुआ. जब हॉस्टल के अंदर थे हम, तो सभी लोग जैसे किसी जैसे पंजाब से कोई पढ़ के आया या कोई गुजरात से पढ़ के आया, तो वो भी हमारे साथ ही होता था. तो हॉस्टल में आप देखेंगे कि जब सब लोग होते हैं तो आपस में कुछ बहस भी हो जाती है किसी चीज़ को लेकर के, दोषारोपण भी करना शुरू कर देते हैं एक दूसरे पे. तो जब कोई गुस्से में होता था तो हमारे चार ग्रुप में से जब कोई गुस्से में होता था या कोई अपशब्द का प्रयोग करना भी चाहता था, तो हम वहां से संस्कृत में शुरू कर देते थे किमर्थम क्रोधम क्रोति भवान. और वो जैसे वो हिंदी में बोल रहा होता था गुस्से में, एकदम जैसे ही संस्कृत में जवाब देना पड़ता था तो बिल्कुल नीचे आ जाता था, क्योंकि संस्कृत में कोई ग्वाली गलोच का कोई शब्द ही नहीं बना.
और कहते हैं कि संस्कृत इज वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट लैंग्वेज.
बिल्कुल. और अब शब्द की बोलना तो वो भी ऐसा कि भगवान किम अर्थम अत्र करोती, क्रोधम किम अर्थम करोती,
क्यों गुस्सा कर रहे हैं.
हाँ, तो उसमें ऐसा लगता था कि कितने प्यार से बोल रहा है. तो उस व्यक्ति का गुस्सा इतना नीचे आ जाता था कि सब माहौल ठीक हो जाता था.
हमारे साथ एक कॉलर हैं
जी जी,
तो उनको हम लेना चाहेंगे. स्पाइस रेडियो लाइन 4, हाउ आर यू डूइंग?
Hey, Hadi, listening to your show, just need to know some details. कहाँ है और timing, donation देना हो तो कोई contact number.
जरूर.
ये जो कार्यक्रम है 31 मार्च को है, समय है 1 बजे से लेके 6 बजे तक, एक लंबा प्रोग्राम है. इसमें आप किसी भी समय ज्वाइन कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार. और ये पोर्ट कोकेटलम कम्युनिटी सेंटर में आयोजित है, मैबिट हॉल है वहाँ पर, एक बहुत बड़ा वहाँ पर होगा. और अगर आप किसी से कांटेक्ट करना चाहें तो आप फ़ोन पे कर सकते हैं
604-944-0622.
हाँ, इनका वेबसाइट भी है, ये फेसबुक पे भी हैं. अगर आप ट्राई सिटी हिंदू कल्चरल सोसाइटी के नाम से खोजें तो वो वहाँ पर मिल जाएगा.
और अगर कोई इससे जुड़ना चाहे, दान वगैरह देना चाहे, तो उसकी कोई लिमिट है? कोई
कोई भी व्यक्ति मेंबर बनना चाहे तो मेंबरशिप फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री है. वेलकम ईच एंड एवरीवन. आप किसी भी धर्म के हों, यू ऑल आर वेलकम. There is no restriction at all.
Right.
और अगर आप, अगर आपके लिए पॉसिबल है और आपका दिल करता है कि आप कुछ डोनेशन देना चाहें तो आप डोनेशन भी दे सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी दे सकते हैं, आप वहाँ आकर भी दे सकते हैं और ई ट्रांसफर भी कर सकते हैं.
सो क्या अगर लोग डोनेशन दें तो उनको आपके पास वो है, नंबर के वो उसको इस्तेमाल करें और दे कैन गेट अ टैक्स डिडक्टेबल रिसीट.
हमारी संस्था हमारी संस्था इस समय नई है. फॉर्मली जो इस संस्था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का गठन जो है वो दिसंबर 2024 में ही हुआ है. हम चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. हम आपको रसीद दे सकते हैं विच कैन बी इंक्लूडेड इन योर एक्सपेंस रिपोर्ट, किंतु जो जो लोग चैरिटेबल स्टेटस की वजह से जो बेनिफिट होता है वो आपको अभी हमारी संस्था के थ्रू नहीं मिल पाएगा. हम बहुत जल्द ही इसके लिए अप्लाई करेंगे. हो सकता है 6-8 महीनों में या साल भर में हम चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएंगे. कोई भी व्यक्ति अगर ई ट्रांसफर से फंड्स करना चाहता है तो वो है डोनेट donate@hindukulturalsociety.org. मैं फिर से रिपीट करता हूँ, donate@hindukulturalsociety.org. धन्यवाद.
donate@hindukulturalsociety.org. Thank you.
Caller. 604-280-1200, 604-299-8863 हमारे टेलीफोन नंबर हैं. सो हम बात कर रहे थे और आई एम ग्लैड दैट द कॉलर आस्क्ड फॉर द एड्रेसेस वगैरह. तो ये जो आपने बताया है कि पोर्ट कुकुटलम सेंटर में ये हो रहा है, उसका एड्रेस अगर आप बता दें दैट वुड बी वेरी नाइस.
ओके, ये है 2150 विल्सन एवेन्यू इन पोर्ट कुकुटलम. और वहाँ पर अंडरग्राउंड पार्किंग है, पार्किंग फ्री है और बहुत पार्किंग है. 500 से ऊपर की पार्किंग स्पॉट्स हैं, तो आप वहाँ आ सकते हैं. और ये फर्स्ट फ्लोर पे एक मैबिट हॉल है, वहाँ पर होगा. साइंस वहाँ बहुत होंगे और हमारे वॉलंटियर्स वहाँ बहुत होंगे जो आपको जो कीर्तन स्थल पे डायरेक्ट कर देंगे.
परफेक्ट. March 31st, 2024. इसके साथ ये बताइए कि जो लोग आपने कहा कि यहाँ पे हर कोई आ सकता है क्योंकि मंदिरों का और गुरुद्वारों के दरवाजे तो हमेशा खुले रहते हैं लोगों के लिए, वो सब लोग आ सकते हैं जो कि वहाँ पे आना चाहते हैं और जो भगवान से लौ लगाना चाहते हैं. सो यहाँ पे बांके बिहारी नाम आपने, बांके बिहारी का मंदिर क्यों चुना? क्या ज़्यादातर लोग उसी पर विश्वास करते हैं क्योंकि भगवान के तो अलग अलग रूप हैं, उनको पाने के लिए आप कोई भी रास्ता ले सकते हैं. अगर एक ही नाम होता, एक ही रास्ता होता तो काफ़ी भीड़ हो जाती लोगों की वहाँ पे.
ये जो मंदिर है ये क्योंकि जो ओरिजिनली जो ग्रुप इसमें जुड़ा था वो बांके बिहारी जी के भगत थे, और किंतु ये मंदिर जो हिंदू मंदिर है ये सभी के लिए खुला हुआ है. जैसा कि आप जानते हो कि हिंदू धर्म के अंदर भी 8 different फिलॉसफीज हैं जो कि हम वी ऑल हैव को एग्जिस्टेड. और ऐसा नहीं है कि हमारे मंदिर में सिर्फ राधे कृष्ण की ही मूर्ति होगी और सभी देवी देवताओं की पूजा भी होती है. वो सभी लोग आमंत्रित हैं उसके लिए. और जब भी ऐसी व्यवस्था होगी, जब हम फॉर्मली टेम्पल बना पाएंगे, उसमें और भी हिंदू देवी देवताओं का प्रमुख स्थान होगा और उनको फॉलो करने वाले लोग सभी होंगे. जैसा कि हिंदू धर्म में और बाकी सब धर्मों में भी है कि प्रभु एक ही हैं, ये हमारे अपनी सुविधा अनुसार, अपनी श्रद्धा अनुसार हम अपना जो है ढूंढते हैं तरीका प्रभु तक पहुंचने का. तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम सभी को वेलकम करते हैं. नॉट ओनली कि हिंदू धर्म के डिफरेंट ग्रुप्स को,
सेक्ट्स को,
हम सभी धर्मों को. कोई भी व्यक्ति श्रद्धा से आकर वहाँ बैठना चाहे, सुनना चाहे, आनंद उठाना चाहे, वो सादर आमंत्रित है.
मैं चाहूँगी कि डॉक्टर विकास से भी कुछ बातें गुरुकुल की जाएं, और अगर लोग उनके बारे में भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो फोन कर सकते हैं. विल टेक अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक एंड विल बी राइट बैक. स्पाइस रेडियो और रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप, गपशप का प्रोग्राम है और आज हम बात कर रहे हैं बांके बिहारी मंदिर के बारे में. एक संस्था है यहाँ पे, ट्राई सिटी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, ये कल्चरल सोसाइटी है, जो कि इस मंदिर की स्थापना के लिए यहाँ पे लोगों के साथ काम कर रहे हैं. हमारे साथ कुछ कॉलर्स हैं, उनको लेना चाहेंगे हम. लाइन फोर, हाउ आर यू डूइंग?
आई एम डूइंग गुड मैम, हाउ आर यू?
फाइन थैंक यू जी.
मैम आई हैव अ क्वेश्चन विद रवि जी. मुझे ये पूछना था कि ये जो मंदिर है कब तक तैयार हो जाएगा बनकर?
देखिए ये कार्यक्रम हमने करीब करीब 3-4 महीने पहले शुरू किया था. तो अगर आप पूछ रहे हैं कि एक फिजिकल फॉर्म में मंदिर कब बनेगा, तो हमें अभी कुछ पता नहीं, क्योंकि हमारे पास अभी ज़मीन नहीं है और कोई बिल्डिंग नहीं है. मगर हमारे पास क्या है, वो है हमारी एक कम्युनिटी है. 450 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हमारे एक मंदिर के प्रोजेक्ट में हमारे साथ सम्मिलित हैं, हमारे प्रयास में. और हमने जब तक वो फिजिकल मंदिर बन ना जाए, तब तक हमने जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसको बनाए रखने के लिए ये निर्णय लिया है कि हम रेगुलरली कीर्तन करते रहेंगे. लास्ट कीर्तन भव्य कीर्तन हुआ था, जिसमें करीब करीब 300 लोग आए थे. वो 14 जनवरी को हुआ था इस साल. और उसके बाद अगला कीर्तन इस महीने 31 तारीख को है. उसमें ऑलरेडी 450 लोगों ने RSVP किया हुआ है और वो आएंगे. तो हमारा ये उद्देश्य है कि हम इस स्पिरिट को जगाए रखें, और बहुत जल्दी ही हम कोशिश करेंगे कि एक टेम्प्रेरी स्थान ले लें जिसको हम टेम्पल के रूप में यूज़ करेंगे, जिससे कि लोग वहाँ आ जा सकें और लोगों को पूजा करने के लिए और कोई भी विधि विधान करने के लिए एक स्थान मिल जाएगा जहाँ वो आ सकें. इसके अतिरिक्त तो हमारे मंदिर का ध्येय ये भी होगा कि हम उनमें ऐसे कार्यक्रम आरंभ करें जिससे कि यूथ को और इवन एडल्ट्स के लिए भी हम अपनी हेरिटेज के बारे में ज्ञान दे सकें. ऐसे प्रोग्राम हम शुरू करना चाहते हैं, और फ्रॉम टाइम टू टाइम जो डिफरेंट फेस्टिवल्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं. तो हम ये भावना को जागृत रखेंगे और करते रहेंगे टिल द टाइम हमारे पास इतना धनराशि एकत्र हो जाएगी कि हम एक फिजिकल मंदिर बनाने की क्षमता कायम कर सकें. हाँ जी
तो मुझे एक और चीज आपसे पूछना चाह रही थी रवि जी, कि डोनेशन का कोई भी मिनिमम अमाउंट भी हम दे सकते हैं, या जितना भी दान करना चाहे इसका कोई मिनिमम अमाउंट से लेकर हायर अमाउंट तक आप हम कुछ भी पे कर सकते हैं, राइट?
देखिए दान लिमिट, हाँ, दान बाय वेनी नेचर जो है आपकी श्रद्धा अनुसार है. अगर आप $1 भी दान देंगे तो हम उसको सब प्रेम स्वीकार करेंगे. और आप ज्यादा धन भी देना चाहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, परंतु ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि उससे कम या उससे ज्यादा आप नहीं दे सकते हैं. तो हम सभी कॉन्ट्रीब्यूशंस को ग्रेटफुली एक्नॉलेज करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे. और कुछ लोग अगर गुप्त देना चाहें तो वो भी एक्सेप्टेबल है. और दान देने के तरीके कई हैं. आप अगर वहाँ फिजिकली होंगे तो वहाँ डोनेशन बॉक्स भी होंगे. अगर आप वेबसाइट पर देना चाहें तो हमारा वेबसाइट है www.hindu-cultural-society.org. अगर आप वहां जाएंगे तो वो प्रॉम्प्ट आपको बताएंगे कि कैसे दे सकते हैं. अगर आप ई ट्रांसफर भी करना चाहें तो हमारे पास वाया ई ट्रांसफर है donate@hindu-cultural-society.org. उससे भी आप ई ट्रांसफर कर सकते हैं. तो आप चेक देना चाहें तो वो चेक भी आप हिंदू ट्राई सिटी हिंदू कल्चरल सोसाइटी के नाम पे चेक भी दे सकते हैं. तो सभी प्रकार के तरीकों से आप दान भी दे सकते हैं, और जितना मर्जी आप देना चाहें दे सकते हैं. आप कुछ भी ना दें तब भी आप सप्रेम आमंत्रित हैं. आपका आना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ पर आएं और जो हमारा कीर्तन है उसका आनंद उठाएं, अपने मित्रों को बताएं, अपनी फैमिली को बताएं.
थैंक यू रवि जी, थैंक यू सो मच.
धन्यवाद.
थैंक यू जी. सो 31 तारीख इतवार वाला दिन है, और 1 से लेके 6 बजे तक ये होगा 2150 विल्सन एवेन्यू पोर्ट कोकटलम में, उनके मैबिट हॉल में. और उसके बारे में अगर कोई जानकारी लेना चाहे तो वो फ़ोन कर सकते हैं 604-944-0622 पे. चलते चलते समय तो सिर्फ हमारे पास चार मिनट हैं, उसमें आप बहुत ज़्यादा नहीं बता पाएंगे, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी डॉक्टर साहब कि वास्तु का हमारे जीवन में कितना महत्व है।
जी देखिए, हमारे जो शास्त्रों के अंदर वर्णित जितनी भी चीज़ें हैं सभी का बहुत महत्व है, और उनमें से एक है वास्तु।
जी,
तो वास्तु को लेकर के, वास्तु जैसे हमारे बॉडी के अंदर फाइव एलिमेंट्स काम करते हैं, पंच तत्व जिसे हम कहते हैं, वैसे ही किसी भी स्पेस के अंदर भी पंच तत्व काम करते हैं, फायर, वायु, जितने भी हमारे फाइव एलिमेंट हो उनको बैलेंस करना, उसकी कला को वास्तु कहते हैं। जी, वस निवासे धातु से उत्पन्न होता है वास्तु शब्द। तो वास्तु जहां कोई वास करता हो, जहां ज्यादातर समय व्यतीत करता हो, वो उसका वास्तु हो जाता है। जैसे चिड़िया के लिए उसका घोंसला, इंसान के लिए उसका घर, व्यवसायी के लिए उसकी शॉप। तो इसलिए उस फाइव एलिमेंट्स को, जैसे एक एलिमेंट भी हमारे शरीर का भी, अगर कोई, जैसे हम आयुर्वेदा के अंदर बात करते हैं कि पंच तत्वों में से एक तत्व भी खराब हो गया तो पूरी बॉडी धीरे धीरे खराब होने शुरू हो जाती है। हाँ, तो उसी प्रकार से घर है और उसका वास्तु है।
जी, तो दूसरे मानों में वास्तु का जो महत्व है पूरी जिंदगी के साथ है।
जी बिल्कुल,
चाहे आपका घर हो, चाहे आप खुद हो, आपका आपका शरीर भी अगर हो।
जी,
सो जब आप गुरुकुल में पढ़ाई कर रहे थे,
जी,
और आई एम फैसिनेटेड कि आप संस्कृत में वहाँ बात करते थे, यहाँ पे आपने नोटिस किया है कि संस्कृत के एक दो क्लासेस चलते हैं, लेकिन संस्कृत को सीखना कितना आसान है और कितना मुश्किल है?
मैं कहूँगा मेरे लिए, क्योंकि मैंने पढ़ा है, तो मैं कहूँगा सबसे आसान है संस्कृत को सीखना और पढ़ना, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो टफ हो सकता है, मुश्किल हो सकता है। लेकिन जो संस्कृत अभी तक पढ़ाई जा रही है, जहाँ मैंने स्कूलों में देखा आज गज, और वो एक्चुअल में संस्कृत कुछ भी नहीं है। जो वर्णमालाओं का प्रयोग किया जाता है, या लटलकार, लोटलकार, लंगलकार का प्रयोग किया जाता है, वो सिर्फ बेसिक है। जो उसको सीखना है उसके लिए एक अलग पद्धति है। तो एक हमारी संस्कृत भारती एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया में है, तो वो एक कला है संस्कृत को सिखाने वाली, 15 दिन के। उसको हम कोशिश करेंगे कि इन फ्यूचर हम ट्राई सिटी के माध्यम से, या हम कैनेडा के अंदर, वैंकूवर के अंदर लेकर के आए उस कोर्स को। 15 दिन के लिए उस कोर्स के अंदर इन्वॉल्व हो जाओ, बस आप संस्कृत को ही बोलते रहोगे।
I just love that, because हमारी जो भाषा है वो फोनेटिक भाषा है। इन अदर वर्ड्स की जो हम लिखते हैं वही हम पढ़ते हैं। सो संस्कृत के उच्चारण में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अल्फाज तो वही हैं जो हम लिख रहे हैं, राइट? सो अगर वो यहाँ पे आप लेके आए 15 दिन का कोर्स, तो पहले मेरा नाम लिख लीजिए।
बिल्कुल।
बचपन में स्कूल में हमने संस्कृत पढ़ी जरूर है, लेकिन चूंकि अच्छी तरह से उसको हमने इस्तेमाल नहीं किया, या उसके बारे में और जानकारी नहीं ली, तो छठी क्लास के बाद संस्कृत कोई नहीं पढ़ता था।
जी,
ये भी अफ्रीका की बात है।
जी,
पर यहाँ पे अगर वो कोर्स आए तो आई थिंक एवरीबॉडी वुड बी मोर देन इंटरेस्टेड इन joining the course.
जी बिल्कुल, जैसे हिंदी में आ आ ई ई होता है, उसी तरह संस्कृत के अंदर जब आप जिस कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो जब उसको आप पढ़ने जाएंगे उसके अंदर आएगा आई उण री लिख आई ओंग है रट लण यम गण नम जबा यघ दस जब घड़ दस खफा या चटक तब कपा या शश सर हल। तो ये महेश सूत्राणी है, तो ये महेश भगवान शिव के डमरू से ये शब्द निकले थे।
अरे वाह,
तो उनके माध्यम से ये सब।
आपके साथ तो एक पूरा घंटा हम इसी के बारे में बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब कि आप प्रोग्राम में आए, और रवि जी आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने इस मंदिर के बारे में और जानकारी हमारे सुनने वालों को दी। एक बार फिर से, अगर कोई इसके बारे में और जानकारी लेना चाहता है तो 604-944-0622 पे जानकारी ले सकते हैं। आप दोनों का धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद।
इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहते हैं। वो सभी बातें जो आज आपकी नज़रों में अटकी, खटकी और दिल में समाई, उन सबको लेकर हम कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कल के प्रोग्राम में बहुत से लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। एक तो हमारे जो प्रोग्राम हुआ था रेज योर हैंड्स अगेंस्ट रेसिज्म में, टोनी सिंह ने एक बहुत ही खूबसूरत फ्रूट वॉल लगाई थी, उसके बारे में टोनी से हम बात करेंगे। डॉक्टर बुर्जी हमसे बात करेंगे बच्चों के बारे में, जो कि अपने आप को परेशान करते हैं, अपने आप को ठीक नहीं रखते और मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं. इसके साथ साथ फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से माइक कॉलोवे हमारे प्रोग्राम में होंगे और वो बात करेंगे आज जो उन्होंने अनाउंसमेंट की है 490.6 मिलियन डॉलर्स सी स्पैन को देने के लिए. उससे क्या कुछ होगा वो कल के प्रोग्राम में होगा. और इसके साथ साथ कल ही के प्रोग्राम में कंजर्वेटिव पार्टी के दो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हमारे प्रोग्राम में होंगे और वो बात करेंगे कि लिबरल पार्टी एनडीपी पार्टी के साथ मिलकर कितना खर्च कर रही है और उस खर्च को कैसे रोका जा सकता है. ये सब कुछ हमारे कल के प्रोग्राम में. स्टे ट्यून फॉर द ड्राइव होम ग्राइंड विद डीजे फ्लाइट एंड माया राइट हियर ऑन स्पाइस रेडियो एंड योर रिक्वेस्ट्स विद नूतन ऑन रेडियो रिमझिम.